Welcome to BHS Podcast, and this is Technology of Gods. This is going to be the final episode of the first season. So मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग करते हैं. अब लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे मन तो हो ही रहा है कि बाहर जाएं. तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा पॉडकास्ट को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं. आज हम लोग बात करेंगे द मोस्ट एनिग्मैटिक एंड द मोस्ट मिस्टीरियस ऑफ ऑल द ग्रेट पिरामिड्स और उससे जुड़े सारे फैक्ट्स थ्योरीज और कॉन्स्टेलेशन कनेक्शन के बारे में. अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बसे इजिप्ट में गीज़ा प्लेटो में है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा. सेट ऑफ 3 पिरामिड्स, बट सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है. अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं. एंशिएंट इजिप्ट में लोगों ने ये 4th डायनेस्टी के इजिप्शियन फेरो खूफू के लिए बनाया था, और इजिप्टोलॉजिस्ट की बात माने तो इसे बनने में लगभग 20 साल का टोटल टाइम लगा था. कुछ लोगों का मानना है कि खूफू के वजीर हिमोन इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर थे, और इसी के साथ इसकी ओरिजिनल ऊंचाई 146.6 मीटर्स थी, मगर ओरिजिनल केसिंग हटने के बाद अब इसकी ऊंचाई 137.7 मीटर्स ही रह गई है. 3800 साल तक इंसानों द्वारा निर्मित ये सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था, जिसे ओवरकम किया था 160 मीटर्स ऊंचे लिंकन कैथेड्रल ने. अभी हमने बात करी ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई की, अब बात करते हैं इसके बाकी डायमेंशंस और ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग की. और फिर जो मज़ा आएगा, आप बस देखते जाइए कि अर्थ जिस पे हम इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी कितनी सारी इंफॉर्मेशन, कितने सारे फैक्ट्स इस ग्रेट पिरामिड में ऑलरेडी इनकोडेड हैं. एक तो बात ये है कि जब भी हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो मन में एक सवाल तो आता है, ज़रूर आता है, क्यों आखिर इतनी मेहनत करके, इतना टाइम और एनर्जी लगा के इसको लोगों ने क्यों और कैसे बनाया. जब से ग्रेट पिरामिड के ऊपर रिसर्च शुरू हुई है, तब से ही लोग इसके अंदर छुपे मिस्ट्रीज को, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, डिमेंशंस, इवन इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशंस को लेके हमेशा शॉक्ड रहते हैं. ग्रेट पिरामिड इज अलाइंड वेरी वेरी क्लोज टू द ट्रू नॉर्थ और द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जिसे हम अपने कंपास में डायरेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और अगर हम उस समय की बात करें जब ग्रेट पिरामिड बना था, तो तब से अब तक अर्थ की एक्सिस भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के हिसाब से ये एकदम सही अलाइनमेंट में रही होगी. और सिर्फ इतना ही नहीं कि पिरामिड इज परफेक्टली अलाइन टू द कार्डिनल पॉइंट्स, अर्थ पे इसकी प्लेसमेंट इंटेंशनल लगती है. अगर आप ग्रेट सर्कल पास करते हैं ग्रेट पिरामिड के कार्डिनल और ऑर्डिनल डायरेक्शन से, तो ये सर्कल्स अर्थ के सबसे ज़्यादा लैंडमार्क से पास होते हैं. ऐसा और किसी भी लोकेशन पे अर्थ के किसी भी लोकेशन पॉइंट से कहीं पॉसिबल नहीं है. यानी द ग्रेट पिरामिड इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ्स लैंडमार्क. ग्रेट पिरामिड वॉज बिल्ट विद द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन फार इन एक्सेस देन वी हैव एनीथिंग टुडे. इसका एक एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने इंच यूज नहीं किया जैसे कि इंग्लिश सिस्टम में होता है, वहाँ क्यूबिट यूज हुआ था. अब क्यूबिट एक स्टैंडर्ड क्यूब है जिसकी साइड होती है 1.86 फीट, यानी कि एक रॉयल क्यूबिट का मतलब है 1.86 फीट. अब अगर एक क्यूबिट को ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि इट इज़ एग्जैक्टली द 25th मिलियंथ ऑफ द पोलर डायमीटर, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिफरेंस है. अर्थ के पोलर डायमीटर को अगर 25 मिलियन बार आप काटेंगे तो जो एक पीस मिलेगा वो एक रॉयल क्यूबिट होगा. इट्स परफेक्ट. अब अगर आप सॉकेट यानी कि ग्रेट पिरामिड की एक्चुअल कॉर्नर्स की लेंथ, जो कि आती है 365.242 क्यूबिट्स, अर्थ को भी एक साल पूरा करने के लिए जितने दिन लगते हैं, राइट डाउन टू क्वार्टर डे, ये 365.242 डेज ही होते हैं. मतलब एक्यूरेसी का लेवल देख रहे हो आप. पिरामिड की लेंथ और विड्थ कंपेयरिंग these to the latitude and longitude. They are corresponding to the measurements of it. अब इसके अगर scale आप करें, अब इसको अगर scale आप करते हैं, तो ये पता चलता है कि Great Pyramid directly corresponds to the circumference of equator और equator से North Pole का distance, which means it is the scale model of the Northern Hemisphere. और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप ग्रेट पिरामिड की लोकेशन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो वो नंबर एग्जैक्टली मैच करता है टू द स्पीड ऑफ लाइट मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस. अब जब इतना कुछ इन्फॉर्मेशन एनकोडेड है, वो भी इस एक्यूरेसी लेवल पे, तो हम सब इसे जस्ट अ कोइंसिडेंस कह के डिसमिस नहीं कर सकते. अर्थ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है जितना ग्रेट पिरामिड है. बाकी दो पिरामिड्स में जहाँ पे टेंपल्स और वॉल्स पे पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, जिनसे उनके ओरिजिन का, उनके अस्तित्व का रीज़न समझ में आता है, ग्रेट पिरामिड में ऐसा कुछ भी नहीं है. आज तक कोई भी ग्रेट पिरामिड का इंटीरियर डिज़ाइन तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है. दे हैव हैड इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड एवरीवन, और जितना अभी तक डिस्कवर किया भी गया है, दैट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. ग्रेट पिरामिड में एक मशीन लेवल प्रिसीजन है, और कई लोग इसे जियो मैकेनिकल मशीन की तरह भी कंसिडर करते हैं. और जब हम इसे एक मशीन की तरह कंसिडर करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ऐसे सर्टेन फंक्शंस हैं जो कि पिरामिड का कोई पार्ट परफॉर्म करता है. अब पिरामिड में एक सबटेरेनियन चेम्बर है, जिसका डेमोंस्ट्रेशन जॉन कैडमैन नाम के इंजीनियर ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस चेम्बर में दो शाफ्ट्स की मदद से जब पानी छोड़ा जाता है, तो लगभग 300 फीट नीचे ये सबटेरेनियन शाफ्ट है, तो अब वहाँ एक वॉल्व से बाईपास होते हुए पानी और एक रूम में जाता है. इस रूम में पानी का लेवल चेंज होने के वजह से कुछ शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि सीधा सीलिंग पे लगती हैं, जो कि पिरामिड के किंग्स चेम्बर के ठीक नीचे है. एंड नाउ इट बिकेम अ फ्री स्टैंडिंग ग्रेनाइट ट्यून्ड रूम एंड वुड कॉज टू रेजोनेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. अब ग्रेनाइट वही मटीरियल है जिसे हम माइक्रोफोन या टेलीफोन में यूज़ करते हैं. जब साउंड आती है तो ये वाइब्रेट करता है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है. ग्रेनाइट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज हमारी घड़ी में भी यूज़ होता है, जो कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. अगर सिंपल भाषा में मैं इसे समझाऊं, तो अगर आप क्वार्ट्ज को वाइब्रेट करेंगे, यानी कि उसमें मोशन प्रोड्यूस करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. और अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू, तो वो फिजिकल मोशन जनरेट करेगा, जैसे कि हमारी घड़ी में होता है. क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं अपनी क्लॉक्स में, अपनी रिस्ट वॉचेस में, तब वो और उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, जो कि एग्जैक्टली हमारे टाइम के साथ ट्यून्ड है. अब अगर इसी फेनोमिना को हम पिरामिड में कंट्रोल करते हैं, तो मशीन मिलती है जिसमें ग्रेनाइट को वाइब्रेट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अब ये सब क्रिस्टोफर डन की थ्योरी का एक हिस्सा है, जिसमें अकॉर्डिंग टू हिम पिरामिड और द ग्रेट पिरामिड वॉज सेंडिंग आउट सिग्नल्स टू अ सैटेलाइट इन माइक्रोवेव फॉर्म. और उनकी वर्किंग डिवाइसेस की स्टडीज से ये काफ़ी एक्सटेंड तक पॉसिबल भी है, और हम ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं. सेटी प्रोग्राम, जिसमें वी सेंड आउट सिग्नल्स इन स्पेस इन सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स. क्रिस्टोफर डन की एक और थ्योरी है, जिसमें क्वींस चेम्बर में वॉल्स पे मिले सॉल्ट ट्रेसेस का सोर्स बताया है, डाइल्यूटेड HCl एसिड और हाइड्रेटेड जिंक. दोनों ग्रेट पिरामिड के दो अलग अलग शाफ्ट्स में से आते थे. इनके रिएक्शन का रिजल्ट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हम जानते हैं कि द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जब क्वींस चेंबर में हाइड्रोजन एमिट होता था तो इट वुड राइज, तो वो ऊपर के सभी चेंबर्स में जाता था। तो अब इससे एक वाइब्रेटिंग एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब जो ग्रैंड गैलरी है ग्रेट पिरामिड में, उसके 27 स्लॉट्स में रेजोनेटर्स हैं, क्योंकि ग्रैंड गैलरी विल वर्क एज अ रेजोनेटर। इससे एक माइक्रोवेव आता है और ये पूरा सेटअप एक पावर प्लांट की तरह काम करता है, जिसे मे बी 10 साल, 100 साल और इवन डेकेड्स तक एनर्जी मिलती रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में कोई दूसरे स्ट्रक्चर्स में ऐसे सिमिलर फीचर्स ना हो। मेजो अमेरिकन पिरामिड्स और मेसोपोटेमिया में भी ऐसे सिमिलर ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ऑल दिस इज़ नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। अब थोड़ी एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं। हमारी लाइफ हमेशा से ही स्टार्स और उनके मूवमेंट से अफेक्ट होती रहती हैं, और हमें शुरू से ही इन आउटर स्पेस एंटिटीज से कनेक्शन सा फील होता है। मे बी दैट इज़ वाई दी एंशियंट्स लेफ्ट सो मैनी क्लूज फॉर अस ऑन अर्थ, टेलिंग अस वेयर दे केम फ्रॉम एंड वेयर दे वेंट। सो इसी के चलते बात करते हैं एक सबसे कॉमन और ईजिली ऑब्जर्वेबल कॉन्स्टिलेशन ओरायन की। अब ओरायन एक मैन को रिप्रेजेंट करता है, और उसी के साथ उसके बॉडी के मिड में 3 स्टार्स की एक रो है, जिसे ओरायन्स बेल्ट कहते हैं। दी ग्रेट पिरामिड अलॉन्ग विद दी अदर 2 पिरामिड्स अलाइंस परफेक्टली विद द ओरायन्स बेल्ट। और सिर्फ पिरामिड ऑफ गीज़ा ही नहीं, और भी मॉन्यूमेंट्स जैसे कि टेओटिहुआकान मेक्सिको में, वहाँ भी जो 3 पिरामिड्स हैं वो भी ओरायन्स बेल्ट के स्टार्स के साथ परफेक्टली अलाइनमेंट में आते हैं। और भी वर्ल्ड में ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेम एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट दिखाते हैं। सो अब पिरामिड से थोड़ा दूर चलते हैं तो हमें मिलता है स्फिंक्स, जो कि खुद में ग्रेट पिरामिड जितना ही मिस्टीरियस है। कहते हैं कि जब पिरामिड्स ऑफ गीज़ा ओरायन्स बेल्ट के साथ कॉन्स्टिलेशन अलाइनमेंट में आते हैं तो स्फिंक्स फेसेस टूवर्ड्स द लियो कॉन्स्टिलेशन, और स्फिंक्स एक शेर यानी लायन यानी लियो की बॉडी पे एक ह्यूमन हेड वाला स्ट्रक्चर है। आफ्टर नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स एंड थ्योरीज एंड पॉसिबिलिटीज, डू यू स्टिल बिलीव वी आर और वर अलोन इन द यूनिवर्स? डजंट इट रेज अ लिटिल डाउट दैट मे बी द वे वी लुक एट द अवर वर्ल्ड इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट? I'm your host. You are listening to BHS Podcast, and this is Technology of Gods. Stay tuned. Thank you.